Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, प्रेमानंदे नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय గోవిందాయ నమో నమః
గోవిందాయ నమో నమః
జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య
శ్రీ కృష్ణ చైతన్య
ప్రభో
నిత్యానంద
శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసాది గౌర భక్త వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ శ్రీ రాధా బహరణేశ్వర్ టెంపుల్ ఇస్కాన్ బహరీన్ బలరామ్ దేశ్ మే ఫ్రైడే మార్నింగ్ భాగవత్ క్లాస్ మే ఆప్ సబ్కా స్వాగత్ హై యు ఆర్ ఆల్ వెల్కమ్ వెల్ దేర్ ఇస్ అ శ్రీమద్ భాగవతం థర్డ్ క్యాంటో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ విత్ ఐ వాంటెడ్ టు జస్ట్ కంటిన్యూ వట్ వీ హ్యావ్ లెఫ్ట్ లాస్ట్ టైమ్ ఛఠే స్కంద కా 11వా అధ్యాయ వృతాసుర చతుర్శ్లోకి సో ది థర్డ్ చాప్టర్ కా 26th థర్డ్ క్యాంటో 26th చాప్టర్ ది ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ మేబీ ఇస్ కా ఓవర్ వ్యూ నెక్స్ట్ సండే కోమ్ జస్ట్ వీ కెన్ డూ ది హోల్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ దట్ చాప్టర్ ఆజ్ కంటిన్యూటీ ఉస్కో కర్తే హే లిఖ్ దియా హే యహాన్ ఆల్రెడీ సో యే శ్లోక్ వృతాసుర్ హమ్నే డిస్కస్ కియా థా వృతాసుర్ చిత్రకేతు మహారాజ్ పార్వతీ కే శరాప్ సే వృతాసుర్ హువా वो पहले से ही नारद जी का शिष्य था और संकर्षण की उपासना करने की साधन बताई साधन बताया गया था और संकर्षण ने प्रकट होके भी यही कहा कि जो नारद ने मंत्र दिया है साधन दिया है वही करो इसी प्रिंसिपल को श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं गुरु इज वन उसका रूप अलग हो सकता है देश अलग हो सकता है समय अलग हो सकता है लेकिन टीचिंग एक होती है द प्रिंसिपल एक होता है सो जो नारद ने दिया वही संकर्षण ने कहा दैट इज राइट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु इज ए प्रिंसिपल एंड इज ऑलवेज वन गॉड इज वन गुरु इज वन Science of Self-Realization, Prabhupada is a one full article, Guru is one. So, Vritasura, Yuddha Bhumi, battlefield, Indra ke haath mein vajra hai, jo Bhagawan ne usko diya. According to the advice of the Lord Vishnu, he acquired this vajra. तो भगवान को दिया हुआ है वो वृतासुर जानता है कि इस वजह से मैं मरूंगा और उस स्थिति में वृतासुर के सामने जैसे भगवान खड़े हैं अब वो युद्ध को भूल गया अस्त्र शस्त्र को भूल गया इंद्र को भूल गया वो भगवान को सीधा प्रार्थना कर रहा जैसे भगवान के पास जाने वाला है और क्या कह रहा है ये हमने श्लोक पढ़ा था इसको आगे पढ़ते हैं अहम
हरेरा
तव पादैक
मूला
दासानु दासो भविष्यतास्मि भूयः మనః సమరేత సమరేతాసో तेरे गुणान सत्ते गणित वाका करम करो तुकाय अहम हरेर तव पादेक मूल दास अनुदास। भगवान मैं आपके चरण कमलों के दासों का दास भविष्यामि भूय कब बनूंगा। दास अनुदास की परिभाषा है परंपरा। दास अनुदास मीन्स परंपरा। श्री प्रभुपाद से परम पर श्री प्रभुपाद राइट्स दास अनुदास मीन्स एक्सेप्टिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर हु इज इन परंपरा। अंग्रेजी में एक ये शब्द बहुत अच्छा है डिसाइपलिक सक्सेशन। इट्स नॉट गुरु परंपरा, इट इज शिष्य परंपरा। सो दास अनुदास मीन्स डिसाइपल, जो सक्सेशन आ रही है उसका मैं कब दोबारा मुझे सेवक बनने का अवसर मिलेगा। सो दास अनुदास एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड श्रील प्रभुपाद से दिस इज व्हाट चैतन्य महाप्रभु हैज टोल्ड अस। चैतन्य महाप्रभु ने हमको क्या कहा है, गोपी भरतहु पद कमल रियोर दास 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 अनुदास। और इस मंत्र को क्या कहते हैं, भूत सिद्धि। भूत सिद्धि का मतलब क्या है, भूत मतलब ये पांच भूतों का शरीर जिसको बहुत सारी डेजिग्नेशन है। वर्ण आश्रम की डेजिग्नेशन है भाई मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं, ये वर्ण की डेफिनेशन हो गई। फिर आश्रम की मैं सन्यासी हूं मैं ब्रह्मचारी हूं। फिर मटीरियल डेजिग्नेशन हो गई कि मैं इंजीनियर हूं मैं डॉक्टर हूं। तो ये जितनी डेजिग्नेशन है इस शरीर की उन सब को जब भगवान की पूजा करने जाएं जप करने बैठें जब वो भगवान के अंदर सेवा करने जाएं तब और जब भगवान के नाम का जप करने बैठें तब अथवा शास्त्र पढ़ने बैठें तब ये सब अपने दिमाग से उतारनी पड़ेगी इंटेंशन से। ऐसा अपने आप नहीं जाएगी, कहना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूं मैं ब्राह्मण नहीं हूं मैं क्षत्रिय नहीं हूं भाई कौन हो, तब कहना पड़ेगा आप गोपी भरतहु पद कमल योर दास 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 अनुदास। हम तो गोपीनाथ जी आपके भक्तों के भक्तों के भक्तों के पूरी परंपरा में नाम लेके भी कह सकते कि इनके चरणों के गुरु जी के चरणों के वैष्णव के चरणों का दास हूं। तो भगवान एकदम वो सेवा को स्वीकार, भगवान तब वो सेवा पहुंच जाएगी क्योंकि परंपरा से उसको पहुंच जाएगी उधर आसानी से। सो इसको भूत सिद्धि मंत्र कहते हैं। भूत का मतलब अपनी डेजिग्नेशन को प्यूरिफाई करना है। तो जो पूजा में जप में बैठने से पहले ये मंत्र का उच्चारण करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दास दास अनुदास कब मैं बनूंगा, तो भाई दास अनुदास बन के करोगे क्या। इसको वैष्णव ने इसलिए स्वीकार किया है कि अब तीन चीजें कहता है करूंगा, मन समरेतास मन से स्मरण करूंगा, मन से स्मरण करूंगा किसका, पति मेरे स्वामी का। ये बहुत बड़ा एक दूसरा कंसेप्ट है। कभी कभी लोग पूछते हैं हमारा स्वरूप क्या है गोलोक में, व्हाट इज माय स्वरूप माय आइडेंटिटी। ये छोटे बच्चे से पूछो कि आप क्या बनना चाहोगे, पांच साल के बच्चे को तो एक दिन क्या बोलेगा, कभी बोलेगा पुलिस बनेगा, कभी बोलेगा ये बनेगा, कभी बोलेगा ये बनेगा, इवन से एनीथिंग बिकॉज ही डोंट नो व्हाट इज सेइंग। सो हमारी स्थिति उस बच्चे जैसी, अब हम कहें कि हम गोपी है कि गोपा है कि टोपी है कोई चलेगा नहीं। बट वन सेफ इज हम भगवान के सेवक हैं, वो हमारा स्वामी है। दिस रिलेशनशिप ऑफ दास दास अनुदास ये परमानेंट है, इसमें कोई चेंज आने वाली नहीं है। जब तक वो ऑटोमेटिकली अपने आप रिवील हो तब तक दास 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 ये जीवे स्वरूप है। तो ये टाइटल हमारा पक्का है। अभी हमारा अर्जुन 4-5 श्लोक 12वें अध्याय भगवद गीता के पढ़े, ये बहुत अच्छे श्लोक असल में है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड श्लोक है। भगवद गीता के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो सेक्शन है ये है 12वें अध्याय का। इसमें ग्रेटनेस भगवान श्री कृष्ण की है कि एक आदमी जैसे कुएं में गिरा हुआ है, somebody is fallen into the well। अब कोई कहे कि तुम जरा मैं रस्सी नीचे डाली, तुम जंप मार के इसको पकड़ लो, कहां गिरा पड़ा हूं, उठ नहीं सकता हूं, जंप कैसे मारूंगा। कोई बात नहीं, थोड़ा रस्सी को नीचे भेजना है, इसको पकड़ लो, बोला हाथ ऊपर नहीं उठता है। कोई बात नहीं, रस्सी अब कमर तक आ गई, अभी गांठ लगा लो, हम खींच लेंगे, तुम कुछ नहीं करना। सो कृष्णा इज गिविंग आउट ऑफ मर्सी द अल्टरनेटिव टू रीच टू हिम, इज गिविंग अल्टरनेटिव। जैसे फैन को हाथ लगाना है, अब कोई लंबा है तो सीधा हाथ ऐसे करके लगा देगा, कोई बात नहीं, मेरे को भी लगाना है, बच्चा बोलता है तो स्टूल रख के लगा लो, किसी के कंधे के ऊपर चढ़ के लगा लो, लेकिन पहुंचना कृष्ण तक है। सो कृष्णा इज गिविंग द रोप, इज पुटिंग द रोप डाउन एंड डाउन एंड डाउन। तो उसमें ये मन शब्द आया है, इसलिए आई एम जस्ट गोइंग टू, जो फर्स्ट वर्स है द हाइएस्ट, वो क्या है, मई एव मन आधस्व मई बुद्धि निवेश है निवेश ऊर्ध्वम संघ है, मई एव मन आधस्व मई बुद्धि निवेश है। मन और बुद्धि दोनों की, पहले मन रखा फिर बुद्धि रखा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस वर्ष को कहते हैं इंटरनल भक्ति। इंटरनल भक्ति मतलब भक्ति विथ इंटरनल सेंसेस, अंतःकरण से भक्ति। ये सूक्ष्म शरीर है मन और बुद्धि दोनों, इसमें मन का काम है सुमरण, मनः स्मरेतासो, मन का काम है सुमरण, इसको कहते हैं सुमरणात्मिक भक्ति। बुद्धि का काम है एक्चुअली मनन करना, और उल्टा है, हम समझते हैं मन मनन करता है, मन मनन नहीं करता, इंटेलिजेंस से वही एक्सेप्ट समथिंग, बुद्धि से किसी चीज को ग्रहण करते हैं। बुद्धि से आप समझें कि कृष्ण कॉन्शियसनेस अच्छी है, लेकिन मन से जब तक सुमरण नहीं करेंगे तब तो स्टेज नीचे हो गया। तो फर्स्ट स्टेज इज सुमरण आत्मिक भक्ति, वो मन सुमरेता सु। सेकंड है मननात्मिक भक्ति, कन्विंस होना, वो इंटेलिजेंट का काम है, इंटेलिजेंस से कन्विंस होना है। आप कन्विंस हो जाए लेकिन प्रैक्टिस करें, ये जरूरी नहीं है कि सुमरण हो जाए, उसको क्या कहते हैं दूसरी भक्ति को, मननात्मिक भक्ति। ये दोनों इंटरनल भक्ति, और दूसरे श्लोक में क्या है, इसमें दो आ गई इंटरनल भक्ति, और ये जो सुमरण आत्मिक है ये स्पॉन्टेनियस है, इसके लिए करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो मननात्मिक है उसमें एंडेवर करना पड़ता है भगवान को मानने का। सो दीज आर द टू स्टेजेस, और थर्ड स्टेज में क्या है, भक्ति योग का अभ्यास करो, और ये कौन सी है, ये भक्ति इंद्रियों की, इंद्रियों से भक्ति, मेरे काम करो मेरे लिए, मेरे लिए भक्ति योग के नेम से काम करो। ये क्या है असल में, ये है एक्सटर्नल सेंसेस, ये है सेंसेस। अब मन हमारा नहीं है यहां, लेकिन सेंसेस से तो काम कर ही रहे हैं ना, ये माइंड में नॉट बी हियर, मन यहां नहीं लगेगा, बट इंद्रियों से सेवा तो कर ही रहे हैं ना भगवान की, वो रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस है। तो जो तीसरा है वो इंद्रियों से है, वो है अभ्यास रूपा भक्ति, वो अभ्यास रूपा भक्ति, मनन रूप भक्ति और स्मरण रूप भक्ति। क्योंकि लास्ट वर्ष इतनी टेढ़ी है, बिल्कुल उल्टा लगता है एक दूसरे से, उसमें कहते हैं ये टॉप मोस्ट है, उसमें कहते हैं फल कर्म फल त्याग टॉप मोस्ट है। सो वाओ इट इज टेक्निकली, अब इस ग्रुप में तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन दिस वर्ष नीड्स एनालिसिस, और आचार्य ने इसके ऊपर अलग अलग टीका की है। तो यहां जो शब्द है मन सुमरेतासो पतेर तव, पतेर गुणांश तव, क्या सुमरण करना चाहिए, भगवान के गुणों का, हमारे स्वामी के, हमारे पति जैसे जगतपति भगवान है उसके गुणों का सुमरण करूंगा। इसका मतलब ध्यान में बैठने का मतलब वायुर्देश नहीं है, कुछ नहीं है, लाइट का ध्यान नहीं करना है, लाइट का ध्यान करो, ट्यूब लाइट के ध्यान करने से क्या होगा भगवान के गुणों का सुमरण करो। कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है गोविंद लीला अमृत, गोविंद लीला अमृत। उसमें लिखा है 24 घंटे 12 महीने, 24 घंटे हर एक दिन का, 7 दिन सप्ताह के, महीने के 30 दिन और 12 महीनों के 365 दिन राधा कृष्ण कहां होते हैं और क्या करते हैं, और उसको कहते हैं लीला सुमरण। तो मन सुमरा तो पते, हम अपने स्वामी के गुणों का, उनकी लीला का सुमरण करेंगे, उसको कहते हैं लीला सुमरण। हम करते हैं नाम सुमरण, असल में नाम सुमरण क्या करेगा। एक और स्टेटमेंट बहुत अच्छी श्रील प्रभुपाद के पर्पस में, भागवत में मिलती है, जप करने से, बाय चेंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चेतो दर्पण मार्जन हो जाएगा ना, देन वी विल डेवलप टेस्ट फॉर भागवतम चेतना चरितमृत। प्रभुपाद का ये परपट को ध्यान से समझ लीजिए कि जब जप हमारा ठीक होगा तब हमको भागवत पढ़ने में बहुत मन लगेगा, सुख आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, उसको छोड़ने का मन नहीं करेगा। अब आप ये पैरामीटर रख लें कि हम जब भागवत पढ़ते हैं तो हमको नींद आती है कि सुख अच्छा लगता है, ये पैरामीटर है कि हमारा जप क्या रिजल्ट दे। प्रभुपाद सेड बाय चैंटिंग दिस होली नेम व्हेन द हार्ट बिकम क्लींस्ड, हृदय पवित्र हो जाएगा तो धारावाहिक भगवान की लीलाएं अंदर स्फुरित होने लगेंगी अपने आप। और प्रभुपाद जिसको कहते हैं हृदय टेलीविजन, ये दिल का टेलीविजन है, ये हृदय का टेलीविजन अपने आप चालू हो जाएगा। और बहुत सी भगवान की, अच्छा भगवान की लीलाएं दो प्रकार की हैं। एक भगवान की लीला को कहते हैं नित्य लीला, और नित्य लीला के लिए दूसरा शब्द है अनमैनिफेस्ट पास्ट टाइम। मैनिफेस्ट नहीं है, अनमैनिफेस्ट है, नित्य है वो, तो देर अनलिमिटेड, उनका कोई लिमिट नहीं। दूसरे भगवान की लीला को कहते हैं व्यवहारिक लीला। व्यवहारिक लीला मीन्स मैनिफेस्ट पास्ट टाइम, अवतार काल में जब भगवान अवतार लेते हैं तब जो लीला करते हैं जो भागवत में है वो मैनिफेस्ट लीला है, वो मैनिफेस्ट लीला है। इसके अलावा अनंत लीलाएं हैं जो अनमैनिफेस्ट नित्य हैं। ये बात समझ में आ रही? आप कहीं कहीं कभी ऐसे लीलाएं सुनते हैं जो कहते भागवत में नहीं है और पुराण में नहीं है, लेकिन संत जो जो आचार्य गुरुजन साधु जो भगवत रसिक भक्त है उनके हृदय में बहुत अद्भुत लीलाएं प्रकट होती है। जैसे हम रूप गोस्वामी के ध्यान की लीला में राधा रानी का वो फूल चुनते हुए अटकते हुए देखते हैं, ये भागवत में लीला नहीं है। या रघुनाथ दास गोस्वामी धूप में बैठे हैं और राधा रानी ऊपर से चुनरी से छाया कर रही है, तो ये लीला भागवत में नहीं है। लेकिन ये जो जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनके हृदय में ये सब लीलाएं अपने आप स्फुरित होने लगती हैं, देर अपीयर देर ऑटोमेटिकली, उनको कहते हैं अनमैनिफेस्ट नित्य लीला, वो तो हो रही है। तो हमारे को हमारा सारा मुख्य काम क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क वी हैव टू डू, वी हैव टू क्लीन द हार्ट। ये टेलीविजन अपने को जरा फिट करना है, इसको ठीक करना है। जैसे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, अभी देखो अभी यहां भी ये हाल खाली नहीं है, इसमें दुनिया भर के चैनल्स की सब फोटो घूम रहे हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे आंख में वो ताकत नहीं है, कान में वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। अभी यहां टेलीविजन लगा हो तो कहीं का भी कुछ चीज दिखाई दे देगी, यहां टेलीविजन चैनल लगा दो तो अभी आपको सब कुछ दिखाई देगा, कि कोई वृंदावन की कथा भी करने वाला दिखाई दे सकता है और अमेरिका का भी कोई डांस दिखाई दे सकता है यहां बैठे हुए, ये पॉसिबल है कि नहीं। तो ऐसे जब हमारी अपनी फाइन ट्यूनिंग हो जाएगी हार्ट की, तो गोलोक में होने वाली लीलाएं भी इसमें स्फुरित होने लग जाएंगी, अपने समय के ऊपर ये होने लग जाएंगी। ये हमारे को मेन है, काम ये करना है, ये सफाई करना है, इसमें बहुत टाइम लगता है, ये चीज करना इतना आसान नहीं है। इट लुक्स वेरी इजी बट इट रियली टेक एंडेवर। तो ये कहता है मन से सुमरण करूंगा, ये हमारे स्वामी आपके गुणों का, गुण नहीं लिखा होता तो कोई मायावादी कहता है मैं अपना सुमरण कर रहा हूं, पति के गुणों का सुमरण करूंगा, मतलब भगवान आपके गुणों का। भगवान के गुण कैसे हैं? भगवान तो निर्गुण है, इज बियॉन्ड थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, इसलिए भगवान को कहते हैं निर्गुण है। लेकिन भगवान निर्गुण होते हुए भी दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, और भगवान का सबसे आनंद देने वाला और सबके लिए होप देने वाला गुण कौन सा है? आशा देने वाला। भगवान, किसी ने कहा भगवान भक्त वत्सल है, बहुत अच्छा गुण है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल की आपको माना आती है? वत्स कहते हैं गाय के, नए गाय के बछड़े को, जिसको गाय ने अभी जन्म दिया है। द काव हैज गिवन बर्थ टू ए जस्ट काफ, छोटी बेबी, उसको बोलते हैं वत्स। और गाय, उसको आप कुछ खाने के लिए दो, उसके अंदर गाय का अपना भी अगर गोबर या यूरिन होगा तो गाय खाएगी नहीं, नहीं खाएगी, कभी भी नहीं खाएगी, गाय का नेचर है। लेकिन अपने बच्चे को जन्म देते ही जबान से चाटती है, उसके ऊपर मल मूत्र सब कुछ, पीप खून सब लगा होता है, लेकिन चाट के जब तक उठ के दूध नहीं पीता है तब तक चाटती रहती। कभी आपने देखा है ये? हम गौशाला में एक दिन बैठे थे, हमारे सामने बच्चे को जन्म दिया, उसको चाट के उठ के खड़ा हुआ, बच्चे ने दूध पिया, मां उस हालत में उसको धो के साफ कर दिया। इसको कहते हैं भगवान क्या है? वत्सला, मतलब जैसे गाय बछड़े को धो के साफ करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त के सारे दोष धो के साफ कर देते वत्सला ये। लेकिन भक्त ने कहा मैं भक्त होऊंगा तब भगवान साफ करेंगे ना, मैं तो भक्त कब बनूंगा। तो ये गुण तो बहुत अच्छा है भगवान का, लेकिन फिर कहा पति तपावन है, बोला ये इसमें काम चल जाएगा, मेरे जैसा पति भगवान को मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए मेरा नंबर लग जाएगा। पति तपावन हेतु तब अवतार, मौसम पति तना पाई बे आर। तो पति तपावन है भगवान, ये बड़ी आशा है भक्तों को, कह रहे मेरे जैसा पति कहां मिलेगा। अगर भगवान को पति तपावन नाम सार्थक करना होगा तब तो मेरे को उद्धार करेगा तब ना। एक बार पढ़ा रहे थे भक्ति शास्त्री, तो एक भक्त को कहा अपना अनुभव बताओ, वो बोलता है हम जहाज में जा रहे थे और जहाज में बहुत टर्बुलेंस हुआ और खतरे जैसा माहौल हो गया, तो मैं जप कर रहा था जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबने कहा ये क्यों कर रहे हो? बोला डरो मत, जहाज नहीं गिरेगा। बोला क्यों? बोला मैं जप कर रहा हूं ना। बोला इससे क्या होगा? बोला अगर मैं मरूंगा तो भगवान को मेरे को गोलोक जाना है, ले जाना पड़ेगा, और मैं इसके लायक नहीं हूं, इसलिए जहाज नहीं गिरेगा। कितना अच्छा स्टेटमेंट भाई, मैं जब करता करता मरूंगा अभी तो मुझे गोलोक जाना पड़ेगा, मैं इसके लायक नहीं हूं, इसलिए जहाज नहीं गिरेगा। ये भी बहुत बड़ा जो है कन्विक्शन है डिवोटी का। कि भगवान पति तपावन है, बड़े हम जैसे पति थे हमारा उद्धार कर लेंगे, दीन बंधु है। दीन कहते हैं जिसका कोई नहीं हो, लेकिन भगवान कोई कहता है कि मैं अनाथ हूं तो भगवान कहता है ये बेकार है, मैं नाथ हूं तो अनाथ अपने आप को क्यों कहता है? ये तो यहां पति शब्द कह के सबके लिए होप रख दे कि आप भगवान को अपना नाथ तो मान ही लीजिए, हमारा नाथ तो है, उसके गुणों का मैं मन से सुमरण करूंगा। मन सुमरे तासु गुणान पति गुणान ते, हे भगवान आपके गुणों का मैं मन से सुमरण करूंगा। ये सुमरणात्मक भक्ति है, ये उच्च कोटि की भक्ति है जिसमें मन भगवान के सुमरण में लगा रहे। और दूसरी लाइन में कहता है गृणता गृणता वाक, दूसरा काम है कि अपनी वाणी से आपका गुणगान करूंगा। गृणित मतलब गाना, बोलना, कीर्तन करना, वाक मतलब वाणी। तो ये हो गया दूसरा, वाणी से भगवान मैं कब दोबारा आपके भक्तों के सेवक बनके आपके गुणों का वर्णन करूंगा। और तीसरा कर्म करो तो काय, अपने शरीर से आपकी सेवा करूंगा। अब ये तीनों हो गया ना, मन कर्म और वचन, शरीर वाणी और मन, तीनों से इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति में ये तीन है, ये भक्ति का सूत्र है। 11वां अध्याय भगवत गीता लास्ट वर्स 55 क्या है? मत कर्म किन मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्व भूतेषु यह समामेति पांडव। इसको कहते हैं भक्ति का सूत्र। ये श्लोक भक्ति का सूत्र है, इसके बाद 12वां अध्याय शुरू हो रहा है। इस सूत्र में तीन चीजें करनी है और दो नहीं करनी। तीन करनी क्या है? मत कर्म करण, शरीर से काम मेरे लिए करो, शरीर से काम मेरे लिए करो। और दूसरा है मत परमो, मन से मुझे पाना जीवन का लक्ष्य बनाओ। गोल ऑफ योर लाइफ शुड बी टू अटेन मी, मत परमो। तीसरा है मद भक्त, हृदय से मुझसे प्रेम करो। भक्त का मतलब है प्रेम, दिल से प्रेम मुझसे करो, मन से मुझे पाना लक्ष्य बनाओ और शरीर से मेरे लिए काम करो। यह है भक्ति का सूत्र। इसका मूर्तिमान रूप कौन है देखना है तो, जब यशोदा मैया दही का मंथन कर रही है, वहां तीन श्लोकों में मंथन शब्द आया है। मंथन का मतलब साधन, ये हम जो जप करते हैं ये मंथन है, ये साधन है। तो साधन मैया क्या कर रही है? शरीर से मंथन कर रही है, मन से कृष्ण का स्मरण कर रही है। आज उठेगा मेरे हाथ का मक्खन खाएगा, किसी के घर में कैसे जाएगा, ये मन से सो। और वाणी से गुणगान कर रही है कृष्ण की लीलाओं का। तो तीनों काम कर रही है ना, ये है मूर्ति भक्ति, भक्ति मति मूर्ति। शरीर से काम भगवान का, मन से सुमरण भगवान सा भगवान का, और वाणी से भी गुणगान कीर्तन भगवान का। ये भक्ति का सूत्र है। और दो चीजें नहीं करनी है, वो क्या है? संग वर्जित। संग वर्जित मतलब जो भगवान की भक्ति के विपरीत संग है उसका त्याग कर दो। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कर्मी ज्ञानी इनके संग से दूर रहो। तो क्या इनसे शत्रुता करें, इनको बुरा भला कहें? नहीं, निर्वैर सर्वभूतेषु, ये उल्ट एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। संग वर्जित निर्वैर, उनके संग नहीं करो का मतलब क्या है? संग नहीं करो और संग करो में क्या, संग करो और संग नहीं करो, भक्तों का संग करो और अभक्तों का संग मत करो, इसका मतलब क्या है? भक्तों का संग का मतलब है, ये श्लोक याद करना चाहिए, भक्त संग क्या होता है? मत्सिद मतगत प्राण बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, ये है भक्त के संग की परिभाषा, भक्त के संग में भगवान की कथा सुनने को मिलती है, भगवान का कीर्तन सुनने को मिलता है, इसको कहते हैं भक्त का संग। ऐसे नहीं है भक्त के संग में बाहर बैठ के कहीं रसगुल्ले खा रहे हैं, कहां ऐसा, ये भक्त का संग नहीं। भक्त का संग मतलब हरि कथा, भक्त के संग में हरि कथा और कुछ भी नहीं। और भक्तों का संग मत करो, इसका मतलब ये नहीं है ऑफिस मत जाओ, इसका मतलब ये नहीं है बाजार में सामान लेने मत जाओ। डोंट लिसन टू देयर कंफ्यूज कंसेप्शन, वो उनके उनका संग लो मत, उनको संग दो, जाना चाहिए। निर्वैर की परिभाषा क्या, प्रचार खत्म। आप कहेंगे कि ये भक्तों के पास जाएंगे नहीं तो प्रचार किसको करेंगे, तो निर्वैर कहने का मतलब है कि जाओ सबके पास, लेकिन उनका संग मत लो, उनको संग दो। द प्रिंसिपल इज गो एवरीवेयर, डोंट टेक फ्रॉम देम, गिव देम कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन होता क्या है प्रायः, भक्त जब प्रचार करने जाते हैं तो उनको भक्त बनाने के बजाय वहां से वैसे ही बन के आते हैं, उनका संग ज्यादा पड़ता है। श्री प्रभुपाद जब संन्यास दे रहे थे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, लेकिन जयपुर में दिया था गोविंद देव मंदिर में, ऐसे आई रिमेम्बर समथिंग लाइक दैट। तो प्रभुपाद ने कहा आप देखो आप प्रचार करने जाओगे बहुत लोगों के बड़े बंगले महल होंगे, तब ये मत सोचना कि ऐसा मेरे पास था या होना चाहिए था, ये आपके विचार में नहीं आना चाहिए। इट मीन्स यू डोंट टेक एसोसिएशन ऑफ द पीपल व्हेन यू गो टू प्रीच टू देम। और फिर दूसरा का कोई बहुत सुंदर स्त्रियां दिखेंगी बोलो ऐसे मेरी स्त्री थी मैंने छोड़ दी, ऐसा मत सोचना। इफ यू थिंक लाइक दैट इट मीन्स यू आर टेकिंग एसोसिएशन फ्रॉम द वर्ल्ड। और भीम एक बार वो संन्यास दीक्षा दे रहे थे वृंदावन में, भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज अनुगुर जनार्दन महाराज को, तो भीमा उस दिन कह रहा था प्रभुपाद ने कहा अगर आपको नई गाड़ी का मॉडल देखना और स्त्री के बारे में विचार आता है तो संन्यास लेने के लिए आप अभी फिट नहीं हो, क्योंकि आपको BMW दी जाएगी, आप छोटी गाड़ियों को क्यों देख रहे। तो बट ही सेड प्रभुपाद सेड समथिंग लाइक दैट। तो निर्व भक्तों का संग नहीं करने का, अब भक्तों का संग नहीं करने का मतलब यह नहीं है कि जाओ मत कहीं, उनसे कुछ ग्रहण मत करो जो आपकी भक्ति में रुकावट डालेगा। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन जब कर रहे थे हम तो मंदिर में जाना शुरू किया, लेकिन डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है प्रोफेसर ऐसे दिमाग में, तो मंदिर में सब लोग प्रणाम करें हम प्रणाम नहीं करें। तो हमारा प्रोफेसर जो था वो तो 5 टाइम नमाज पढ़े, मैं देखूं मेरे सामने 5 टाइम प्रणाम कर रहा है। अब मैंने देखा ये मेरा प्रोफेसर जो मेरे से सीनियर है ये इतनी बार प्रणाम कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं। तो अब ये उससे सीखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, तो ऐसे कहीं से संग में से कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो लेने में कोई आपत्ति नहीं है जो आपके भक्ति में फेवरेबल है। और बहुत सी ऐसी चीजें, प्रभुपाद जब तिरुपति मंदिर गए के मैनेजमेंट यहां से सीखना चाहिए, कैसा पूजा का सिस्टम है, इज ए परफेक्ट वे है, वी शुड लर्न फ्रॉम हियर। कहीं प्रसाद परोस रहा था एक दक्षिण भारत में प्रभुपाद के शिष्यों को, पक्की उम्र का बंगाली, सब प्रसाद बनाया प्रसाद, यू हैव टू लर्न फ्रॉम हिम हाउ टू सर्व प्रसाद, भाई पहले क्या देना है बाद, ये यू हैव टू लर्न फ्रॉम हियर। सो प्रभुपाद वॉज प्रैक्टिकल, कहां से सीखना चाहिए और कहां संग नहीं करना चाहिए, लेकिन वेयर किसी से मत रखो। कीप योर डोर ओपन फॉर एनीबडी कैन कम एंड ज्वाइन कृष्ण कॉन्शियसनेस एट एनी टाइम, तो दरवाजा खुला रखो। तो ये श्लोक में श्री प्रभुपाद जी पर्पट में लिख रहे हैं, अब इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ओ माय लॉर्ड, हे मेरे पति, सुप्रीम पर्सनल गॉड Will I again be able to be servant of your eternal servants who find shelter only at your lotus feet? भगवान क्या मैं अब क्या कि मैं भी शरीर छोड़ने वाला हूं, इंद्र वज्र चलाएगा और मैं मरूंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, आपको अगर युद्ध याद है पूरा, इंद्र ने वज्र चलाया, एक हाथ कट गया वृत्रासुर का, दूसरे वज्र से दूसरा हाथ कट गया, वृत्रासुर ने मुंह खोला और इंद्र को निगल गया और इंद्र वृत्रासुर के पेट में चला गया, हाहाकार मच गया एवरीवेयर, अब इंद्र गया पेट में, लेकिन वृत्रासुर समाधि में बैठ गया भगवान के स्मरण में, अभी जो लिखा है। और उस वक्त ऑलरेडी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, वृत्रासुर तो पहले ही भगवान के धाम चला गया, मरे हुए शरीर को इंद्र को एक तो नारायण कवच पहना हुआ था और दूसरा उसके हाथ में था वज्र, उस वज्र से मरे हुए वृत्रासुर का शरीर काट के इंद्र बाहर निकला। अगले अध्याय 12वें अध्याय के मेरे ख्याल में 12वें श्लोक में या कहां इंद्र कहेगा, महान ये वृत्रासुर को मारने की उसको हिम्मत नहीं हो रही थी कि इतना बड़ा भक्त, ये जो श्लोक कह रहा है ये तो भगवान के महान भागवत पुरुष का है और इसको मैं कैसे मारूं। और वृत्रासुर को मारने के बाद इंद्र को बहुत बड़ी हत्या लगी और उस हत्या के कारण इंद्र छुपता फिरा। ये इंद्र अपने आप कहेगा, ये श्लोक आएगा आज शाम के सत्संग में, तो अब दोबारा मुझे कब मौका मिलेगा, इसका मतलब वो इज रेडी टू गिव अप हिज बॉडी। तो अब कैसे मरने से पहले भगवान की प्रार्थना कर रहा है, ये बहुत अच्छे श्लोक है। अब क्या, ओ लॉर्ड ऑफ माय लाइफ, मेरे पति, ओ मेरे प्राणनाथ, लॉर्ड ऑफ माय लाइफ मतलब प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, यहां तो सब प्राण पीने वाले हैं संसार में प्राणनाथ ने प्राण, मे आई अगेन बिकम देयर सर्वेंट सो दैट माई माइंड में ऑलवेज थिंक ऑफ यूर ट्रांसेंडेंटल एट्रीब्यूट्स। कहते उनके संग में भगवान आपकी मुझे ये बातें याद आएंगी हमेशा, अपने आप नहीं आएंगी, भक्तों का संग मिलेगा तो आएंगी, आपके मैं गुणों का स्मरण करता रहूं हर समय आनंद में मगन रहूं और क्या करता रहूं, माय वर्ड ऑलवेज ग्लोरीफाई दोज एट्रीब्यूट्स, और फिर भगवान आपका कीर्तन करता रहूं, वाणी से गुणगान करता रहूं, एंड माय बॉडी ऑलवेज एंगेज इन द लविंग सर्विस ऑफ योर लॉर्डशिप। आप प्रभुपाद लिखते हैं, दिस वर्स गिव द सम एंड सब्सटेंस ऑफ डिवोशनल लाइफ, ये श्लोक भक्ति का सूत्र है। तीनों चीजें आ गई ना, मन से स्मरण, वाणी से कीर्तन और शरीर से सेवा, और ये तीनों चीजें सन्यासी के दंड का अर्थ होता है। दंड जो तीन डंडे होते हैं ना, मन कर्म और वचन, ये तीनों भगवान की सेवा में लगने हैं, स्मरण में लगने हैं। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा 11वें श्लोक अध्याय का 55 वर्स पढ़ के देखेंगे ना, तो प्रभुपाद ने कोई मुश्किल नहीं है, जो भी काम आप करते हो वो करते रहो, लेकिन सिर्फ भगवान को उसमें प्रायोरिटी दे दो, कुछ मुश्किल नहीं है। बाजार में कुछ सब्जी खरीदने जाए तो कहो कि अच्छी जो लगे, बोला ये भगवान के लिए आज बनाऊंगा बहुत अच्छी लगेगी, ये आज भगवान को दूंगा बहुत अच्छा लगेगा, वो सिर्फ कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, काम तो वही करने हैं जो रोज कर रहे हैं, जो आपका प्रोफेशन है उसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, जो कुछ आपके पास है वो भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, सिर्फ कॉन्शियसनेस को चेंज करनी। और प्रभुपाद लिखते हैं, वन मस्ट फर्स्ट बिकम ए सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड दास अनुदास। श्री चैतन्य महाप्रभु एडवाइज्ड एंड ही आल्सो शोड बाय हिज ओन एग्जाम्पल that a living entity should always desire to be servant of the servant of the servants of Krishna, the maintainer of the gopi, gopi bharata upad kamala yor das, das anudas। Prabhupada ne likha, Chaitanya Mahaprabhu ne ye kaha aur phir swayam ye karke dikhaya, wo kaise, how Chaitanya Mahaprabhu has demonstrated this, bhakt ka bhakt ke bhav se prakat hue na, अपियर इन ए भक्त के भाव में प्रकट हुए हैं। भक्त का भाव क्या है? भक्तों के भक्तों के भक्तों का दास बनना। तो ये भाव महाप्रभु ने अपने जीवन में दिखाया कि अपने जो अपने से सीनियर जितने भी सन्यासी और सीनियर होते थे उन सबको बड़ा आदर देते थे। सनातन गोस्वामी को अपने गुरु के समान समझते थे, उनके बात को सुनते थे, उनको कहते थे। तो ये भाव जो है प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये लाइन जो इसके ऊपर मेडिटेट करना चाहिए। श्री चेतना महाप्रभु एडवाइज एंड ही आल्सो शोड बाय हिज ओन एग्जाम्पल। अपने एग्जाम्पल से चेतना महाप्रभु ने कैसे दिखाया? कोई एग्जाम्पल आप दासानुदास का भाव चेतना महाप्रभु ने दिखाया, आगे वाली लाइन आएगी जो क्लियर हो जाएगा। चेतना महाप्रभु एक्सेप्टेड स्पिरिचुअल मास्टर, पहले ईश्वरपुरी को और फिर सन्यास के लिए भारती, कौन सा भारती? केशव भारती को। सो बाय एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर ही हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड दिस प्रिंसिपल। कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया? भगवान की जरूरत नहीं है दीक्षा लेने की या गुरु बनाने की, बट ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दिस। द नेक्स्ट लाइन विल क्लियरिफाई दिस। दिस मीन्स दैट वन मस्ट एक्सेप्ट ए स्पिरिचुअल मास्टर हु कम्स इन डिसिपलिक सक्सेशन एंड इज द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। अब ये क्लियर हो गया, हाउ ही डिमॉन्स्ट्रेटेड? बाय एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर। भगवान गुरु बनाने के लिए तैयार है और हम कहते हैं क्या जरूरत है गुरु बनाने, ये भगवान से बड़े हो गए ना, क्या जरूरत है गुरु बनाने की। दास शब्द लगता हमारे को तब है जब गुरु बनाते हैं, तो देन वी गेट दिस गुड टाइटल ऑफ दास। एंड दास 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 अनुदास ऑटोमेटिकली, बिकॉज हम जिसके दास है वो और किसी का दास है, वो और किसी का दास है, ऐसे जाते जाते राधा कृष्ण के दास हो जाते हैं। दिस इज द बिगनिंग, ये बिगनिंग है हमारा। तो ये एक कंसेप्ट चेतना महाप्रभु का एग्जाम का कंसेप्ट, हाउ ही गेव एग्जाम्पल? बाय एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर अंडर द डायरेक्शन वन अंडर दिस अंडर हिज डायरेक्शन अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर One must then engage one's three propensity, namely his body, mind and words. The body should be engaged in the physical activity under the order of its spiritual master. कौन सी activity spiritual master कहते हैं? रोज सुबह क्या कहते हैं मंगल आरती में? गाते क्या हैं? श्री विग्राराधन नित्य नाना श्रृंगारतन मंदिर मजनाद। ये शरीर से काम करना है ना? चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, और भगवान का प्रसाद बनाना है, भगवान के विग्रह की सेवा करनी है, मंदिर को साफ करना है, ये शरीर का काम है। तो शरीर से ये सेवा करनी है, इसलिए हरेक को अपने घर में, जहां मंदिर नहीं है तो अपने घर में मंदिर बना के ये सेवा का, शरीर से कुछ सेवा करने का नेम बनाना चाहिए। दिस इज द सर्विस विद बॉडी। जब घर में विग्रह है तो शरीर से सेवा होगी, गुरु तो यही सिखाते हैं ना, तो क्या पढ़ते हैं? दिस इज द सर्विस व्हिच गुरु टीचेस अस टू डू। तो शरीर से ये सेवा करनी चाहिए। माइंड एंड वर्ड्स, द बॉडी शुड बी एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी अंडर द आर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। द माइंड शुड थिंक ऑफ कृष्णा इंसिसेंटली, हमेशा कृष्ण का मन ध्यान कैसे करेगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हर समय कृष्ण का ध्यान रहे मन में। अर्जुन ने यह प्रश्न इसलिए पूछा है 10वें अध्याय भगवद गीता में कि आपके मंदिर में आपका ध्यान हो ये तो ठीक है, आप समाधि में आपका ध्यान हो सकता है, लेकिन हर समय काम करते हुए आपका ध्यान कैसे हो? और 8वें अध्याय भगवद गीता में एक महावाक्य है भगवद गीता का, तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुसम्र युद्ध च। युद्ध के लिए आप समझो कि आपका जो काम है वो, हाँ, वॉट एवर यू आर डूइंग, भाई आप खाना पकाते हो या कोई एसी फिट कर रहे हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो या इंटीरियर डिजाइनर हो, लेकिन उसके आगे लगाओ तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुसम्र युद्ध च, और समर नहीं लिखा है कृष्ण, इज वो टेक्निकली बहुत टेढ़ा है, जैसा शरीर का टेढ़ा है उसकी भाषा भी बहुत टेढ़ी है। अब श्री प्रभुपाद ने एक जगह लिखा, दोज हु डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स विल गो बैक टू गॉड हेड, लेकिन आखिर में नीचे लिख दिया थ्रू आउट लाइफ। तो बस वन वर्ड एडेड एंड एवरीथिंग बिकम वेरी सीरियस। सो सिमिलरली कृष्ण सेज अनुसमरे, जरूर सेज सुमरे, माम अनुसमर, अनु का मतलब होता है फॉलो, अनु कहते हैं छोटे को, या अनु कहते हैं वन हु फॉलोज, इसका मतलब जैसे सुमरण पहले गुरुजनों ने सिखाया है वैसे करो, अपने मन से मत करो, डोंट इन्वेंट समथिंग ऑफ योर ओन, जस्ट फॉलो द एग्जाम्पल एंड द टीचिंग ऑफ द प्रीवियस आचार्य। अनुसुमरण शब्द है, सुमरण शब्द नहीं है, अनु। तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुसुमर, माम डाल दिया, कृष्ण का मेरा सुमरण करो, और कैसे करो, तो यहां गोपी भर किस लिए क्यों रखा है, गोपी परदव पर गोपी भरतव क्यों रखा है, इसने बेचारे ने पति कह दिया, तो पति तो भगवान गोपियों का है, गोपी पर गोपीनाथ है, तो गोपियों का जैसे सुमरण था ऐसे सुमरण करो। ए इसके अंदर इंप्लाइड ये है कि सुमरण कैसे करो, जैसे गोपियां करती थी। अब गोपियां काम अपने घर का करती थी, लेकिन सुमरण सदा श्री कृष्ण का बना रहता था। तो ये सुमरण का कौन सा स्तर है, इसको कौन सा भक्ति, कौन सी भक्ति कहते हैं, अनुगा नहीं है, अनुगा तो हम करते हैं, ये है राग आत्मिक भक्ति, ये स्पॉन्टेनियस लव फॉर कृष्ण, हम करते हैं अनुगा, हम वी आर फॉलोअर्स ऑफ दोज हु आर इन स्पॉन्टेनियस लव ऑफ कृष्ण। तो गोपियां, इसलिए चेतना महाप्रभु का मत क्या है, आराध्यम ब्रजेश तन्यम तदधाम वृंदावनम, आराधना मतलब सुमरण करना, किसका सुमरण करना है, ब्रजेश तन्यम, ब्रजेश तन्यम कहके श्री कृष्ण जो धरती के ऊपर नंद बाबा के घर में प्रकट हुआ, बहुत बड़ी बात कही, ब्रजेश तन्यम कहने का मतलब वो जो नंद बाबा के घर में बेटा होके पैदा हुआ। वैसे भागवत को ऐसे पढ़ते हैं कि नंद के घर में कृष्ण जन्म हुआ ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन नंद और यशोदा ने भी कृष्ण को, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है वो तो इनके घर में प्रकट हुए, और जो वसुदेव कृष्ण है जो अवतार लेके आए थे, वो वसुदेव और देवकी के वहां चतुर्भुज रूप में कंस के कारागृह में प्रकट हुए, दो कृष्ण प्रकट हुए। ये बहुत रहस्य है ना, ये ब्रजेश तन्यम क्यों लिख दिया, तन्यम का मतलब तन कहते हैं शरीर को, जो नंद बाबा के शरीर से प्रकट हुआ है। नंद बाबा कोई मेरे ख्याल में 80 साल के हो गए होंगे, तो एक दिन सुबह सवेले स्नान करके आ रहे थे जमुना से, ये ब्रजवासी ब्राह्मण बाहर कहते थे, बाहर बैठे थे, ऐसे कह दिया पुत्रवान भव नंद। नंद बाबा कहते हे ब्राह्मण मजाक क्यों कर रहे हो मेरे से, इस उम्र में कोई पुत्र होता है, आशीर्वाद तो सोच समझ के देना चाहिए। पंडित जी कहते हैं ब्राह्मण के महाराज सोच समझ के देते हैं, वो आशीर्वाद पूरा हो को नहीं हो ये तो अपने आप निकला है तो जरूर पूरा होगा। अब नंद बाबा तो घर चला गया, ये पंडित चले गए सीधे नंद बाबा के पुरोहित सांडिल्य ऋषि के पास, सांडिल्य ऋषि नंद बाबा का पुरोहित है, कहा हमारे सुबह मुख से ऐसे निकल गया कि नंद बाबा को पुत्र संतान हो, अब आप बोलो क्या करना चाहिए। बोला नंद बाबा को बोलो एक यज्ञ करे, और यज्ञ का अनुष्ठान करेगा, ब्राह्मणों को अच्छी तरह से भोजन करा के दक्षिणा देगा, ब्राह्मणों ने के वचन से निकले हुआ वचन भगवान सत्य करता है। बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, और उस यज्ञ की पूर्ण आहुति के समय नंद बाबा ने देखा कोई नीलमणि बालक उनके मन में प्रकट होके उनके हृदय में आ गया, और यशोदा भी लज्जा से कह रही है कि मुझे भी ऐसे लगता है कि जो एक सुंदर बालक जो है वो मेरे हृदय में प्रवेश कर रहा। तो उसके बाद यशोदा यशोदा उसके बाद उस यज्ञ के बाद समय के बाद यशोदा वाज एक्सपेक्टिंग चाइल्ड, वो तो तैयारी हो रही थी वहां नंदमय भवन में। पांच भाइयों को एक बहन थी और उस बहन को बुलाया गया था और वहां भी वो प्रसव की डिलीवरी की तैयारी तो नंद गोकुल में भी हो रही थी। ऐसे अचानक तो नहीं है कि भाई उधर बच्चा पैदा हो गया नंद के घर में, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देयर वाज प्रोसेस वहां भी चल रहा था और उसी वक्त में वो पूर्णमासी आई थी। वो जो जो सांदीपनि मुनि की माता है वो उसी वक्त आई थी और आके कहा कि नंद तुम्हारे घर में बालक होगा। सबने कहा वाह वाह बहुत अच्छा, आपको घर बना के देते हैं, आप यहीं रहिए माता जी। वो माता जी वहां रहना शुरू कर दिया। और उस दिन तो सांदे ऋषि ने कहा कि आज 12 बजे तक तो बालक का जन्म निश्चित होने वाला है, तो ये तैयारियां तो हो ही रही थी। तो योग माया के लिए एक शब्द आया है अनुजा, भगवान विष्णु अनुजा, विष्णु अनुजा। तो मतलब अनुजा का मतलब छोटी बहन। तो छोटी बहन कैसे होगी अगर बड़ा भाई नहीं होगा तो यशोदा के घर में छोटी बहन के रूप में कैसे पैदा हुई जब बड़ा भाई था नहीं। और दूसरा एक वो भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और कारण बताते हैं कि नंद के घर में बालक का जातकर्म संस्कार हुआ। जातकर्म संस्कार का अर्थ होता है मां के साथ जो कनेक्शन होता है अम्बिलिकल कार्ड का, उसको काटना। तो अब नंद बाबा के घर में बच्चे का कनेक्शन कैसे कटा? क्या वसुदेव वहां से कनेक्शन के साथ लाया होगा क्या? तो ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है ना। इसका मतलब वहां बालक का जन्म हुआ वो नेचुरल जैसा हुआ, वहां तो चतुर्भुज में हुआ, यहां चतुर्भुज नहीं हुआ, यहां स्वयं भगवान प्रकट हुए कृष्ण, जो ब्रह्मा जी के एक दिन में 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में आते हैं, सातवें मनवंतर के समय में, सातवें मनु के शासन में। अब सातवां मनवंतर चल रहा है, सेवेंथ मनु 28th साइकिल, और उसके द्वापर के लास्ट चरण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण रेगुलरली आते हैं और वो नंद भवा बाबा के यहां प्रकट होते हैं, वृंदावन में प्रकट होते हैं। और ऑलवेज ही कम अलॉन्ग विद हिज ऑल एसोसिएट्स, अपने सारे संगी साथी साथ लेके आते हैं। तो ये जो ब्रजेश तन्यम आराधनम, ब्रजेश तन्यम तदधाम वृंदावनम, बोला वो भी कृष्ण का मथुरा द्वार का नहीं वृंदावन की लीलाओं का ध्यान करना है, बहुत बड़ी बात है। तदधाम वृंदावनम, मथुरा धाम भी है द्वारका धाम भी है लेकिन वृंदावन की लीलाएं माधुर्य है, उसका ध्यान करना है। कैसे करना है? वृज वधु वर्गेण, जैसे वृंदावन की गोपियों ने भगवान का ध्यान किया है ऐसे ध्यान करना है। उद्धव जब गए थे भगवान का संदेश लेकर तो एक गोपी बच्चे को गोद में उठाया था, पानी भरने जा रही थी तो हाथ में मटका था बाल्टी डालने के लिए और गोद में बच्चा था और वो पेड़ को ऐसे देख रही है और रस्सी बच्चे के गले में डाल दी और कुएं में डाल दी। उसने समझा मटका और बच्चे में कोई अंतर दिखा नहीं। उद्धव ने कहा हे बावरी गोपी क्या कर रही है, मटके में रस्सी डालनी है तू बच्चे के गले में डाल रही है? बोला ओ कृष्ण बांसुरी बजा रहा है देखो कदम के ऊपर बैठ के, उसके ध्यान में पानी भरते भी कृष्ण और बांसुरी बजा रहा है और बच्चे का पता नहीं लगा बच्चे को कुएं में डाल रही है। तो ये स्मरण जो है ऐसा है, ये स्पॉन्टेनियस है, कहीं भी कृष्ण कैसे भी स्फूर्ति होती रहती है। ये जो स्मरण की बात यहां लिखी है, ऐसा स्मरण कब होता रहेगा? मन से और वाणी से भगवान का गुणगान होता रहे। गोपियों ने कितने गीत गाए हैं भागवत में, कितने गोपियों के गीत हैं? 5। पहला वेणु गीत, फिर प्रणय गीत, फिर गोपी गीत, फिर भ्रमर गीत, और फिर है युगल गीत। युगल गीत में गोपियां घर में बैठी हुई जब भगवान गैया चराने जाती है तो भगवान का सुमरण करती हैं, उसका नाम है युगल गीत। ये 5 गोपियों के गीत हैं भागवत में। वेणु गीत तो सबको मालूम है पहले है, उसके बाद प्रणय। प्रणय गीत है, पहला रास अध्याय का गीत, जिसमें गोपियां प्रेम से भगवान को प्रार्थना कर रही हैं कि हमको घर क्यों भेज रहे हो, तो इसका नाम है प्रणय गीत। फिर गोपी गीत है जो हम सब जानते हैं, और भ्रमर गीत तो रूप गोस्वामी ने, वो है भी श्लोक 7, 8, 10 है, उसमें जितने भी भाव है वो सब भाव एक एक श्लोक में एक एक भाव है राधा रानी का, जो भाव है उनका वर्णन एक एक श्लोक में एक भाव अद्भुत है। तो ये स्तर हमसे ऊपर का है, लेकिन ये सुमरण उसकी बात कर रहे हैं, ऐसा सुमरण होना चाहिए। हरे कृष्ण, टाइम हो गया, ये श्लोक पूरा हो गया, 3 श्लोक रात को, 3 श्लोक पूरे करेंगे रात की कथा में। अगली बार ये पूरा अध्याय जो है क्रिएशन वाला फंडामेंटल, इसके ऊपर चर्चा करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को। तो आज शाम को फ्राइडे की कथा में इसके बाद वाले श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। इस श्लोक को श्रीपाद वल्लभ आचार्य ने लिखा है कि ये भक्त का धर्म है, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ये धर्म है भक्त का, दास दास अनुदास, ये हमारा धर्म है। अब हमारा अर्थ क्या है, हमारा धन क्या है, वो कल रात के श्लोक में आएगा, धन क्या है, फिर काम क्या है भक्त का, इच्छा क्या है, और फिर भगवान का, भक्त का मोक्ष क्या है। ये 4 श्लोकों में भक्त का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। हरे कृष्ण, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? नो क्वेश्चन। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय।